रूही को स्कूल छोड़ने के बाद इशिका को एक अनजान शख्स से मिलने के लिए जाना था, जिसने उसे मैसेज करके बुलाया था। उस शख्स ने इशिका को जो लोकेशन दी थी वो दिल्ली के आउट एरिया की तरफ थी, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। इस सुनसान और अनजान जगह पर भी इशिका के चेहरे पर शिकन की एक लकीर भी नहीं थी। इशिका काफी स्ट्रांग थी, अगर कोई आकर उस पर हमला भी करता तो वो उसे संभाल सकती थी। वहां पहुंचने पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ये क्या मजाक है, कोई इंसान मुझे ब्लैकमेल करके इतनी दूर क्यों बुलाएगा जब उसे आना ही नहीं था, खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, इशिका ने इरिटेट होकर कहा। इस वक्त उसे काफी झुंझलाहट हो रही थी, क्योंकि वो युविका से मिलने जाने वाली थी। युविका के जरिए उसे ईशानी के बारे में काफी कुछ पता चल सकता था, लेकिन यहां आने की वजह से उसका टाइम बर्बाद हो गया था। इस वजह से इशिका गुस्से में गहरी सांस ले रही थी। बस बहुत हो गया, अभी भी मेरे पास टाइम है, मैं जाकर युविका से मिल सकती हूँ। अगली बार उसका मैसेज आया तो अच्छा खासा सुनाने वाली हूँ मैं उसे, इडियट ब्लैकमेलर कहीं का, इशिका मन ही मन बड़बड़ाते हुए घड़ी में टाइम देख रही थी। लगभग 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं आया। इशिका इधर उधर देखते हुए वापस जाने के लिए पलटी कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया गया। किसी ने इशिका के मुंह को पीछे से कसकर थाम रखा था, उसके बावजूद इशिका के चेहरे पर परेशानी का एक भी भाव नहीं था और ना ही वो छूटने के लिए अपने हाथ पैर मार रही थी। इशिका बिल्कुल रिलैक्स थी, क्योंकि वो टच उसके लिए जाना पहचाना था। इशिका को बिल्कुल शांत देखकर उस शख्स ने इशिका के मुंह से अपना हाथ हटा दिया। इशिका ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, ये सब करने की क्या जरूरत थी, बोलते हुए उसने कंफर्टेबल पोजिशन लेते हुए दूसरी तरफ बैठे अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और बेपरवाही से कहा, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। हाँ, तो जिस तरह फेक आईडी बनाकर तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, उसी तरीके से मैसेज करके अपनी बात भी तो कह सकती थी, इशिका ने नाराजगी जताते हुए कहा। मैं श्योर नहीं था, कहीं मैसेज कोई और पढ़ लेता और तुम पकड़ी जाती तो, मुझे बहाना बनाना पड़ा, क्योंकि सीधे तरीके से तुम कभी मिलने के लिए नहीं आती और जिस तरह तुम मुझे सुना रही हो वैसे ही कहती कि मैसेज में ही सब बता दूं, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु उल्टे सीधे बहाने बनाते हुए सफाई दे रहा था। वहीं ड्राइविंग सीट पर बैठे पृथ्वी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। उसने मन ही मन कहा, इन्हें कब से अपने एक्शंस की सफाई देने की जरूरत पड़ने लगी, रही बात मैसेज पहुंचने की तो उसके लिए एनी टाइम हमारे सिक्योरिटी एजेंट मैम के पास ही रहते हैं, सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देते कि इन्हें मैम की याद आ रही थी। पृथ्वी अपने मन में खुद से बात कर रहा था, तभी अभिमन्यु ने उसकी सीट पर टैप करते हुए कहा, अब तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओगे या यूं ही हमारे बीच बैठकर हमारी बातें सुनने वाले हो? जैसा आप कहोगे वैसा ही कर लूंगा, पृथ्वी ने धीमी आवाज में कहा और अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने उसे बाहर जाने का इशारा किया। पृथ्वी गाड़ी से बाहर निकला और मन ही मन बड़बड़ा कर बोला, अब एक मैसेज देने के लिए मेरा बाहर जाना जरूरी था क्या? पता नहीं ये कब खुलकर अपने इमोशन जाहिर कर पाएंगे। कभी कभी पृथ्वी को अभिमन्यु के बर्ताव पर दया आती थी, वो कभी अपने इमोशंस खुलकर नहीं रख पाता था। पृथ्वी के बाहर जाते ही अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखा और फिर अगले ही पल उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। इशिका का चेहरा अभिमन्यु की तरफ था और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और इशिका की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे अपनी मिसेज राजवंश को देखना है। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और बहुत सावधानी से अपने चेहरे का मास्क उतारने लगी। हालांकि उसे ये मास्क लगाने और मेकअप सेट करने में बहुत टाइम लगता था, पर अभिमन्यु की खुशी के लिए वो अपनी सारी मेहनत खुद से बर्बाद कर रही थी। फिर उसने अपने लेंस निकाले। इशिका को ऐसा करने में लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लग गया। इस पूरे टाइम में अभिमन्यु ने उसकी कमर पर से हाथ नहीं हटाया था और इंटेंसिटी से उसकी तरफ देख रहा था। इशिका खुद पर अभिमन्यु की नजरों की तपिश को महसूस कर रही थी। मास्क हटाने के बाद इशिका ने नजर झुकाकर कहा, प्लीज तुम मुझे इस तरह मत देखो, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। इशिका के गाल लाल हो रहे थे। अभिमन्यु और वो जिस हालत में करीब आए थे उसमें उन दोनों को ही पूरी तरह होश नहीं था। आज इस तरह अपने पूरे होशो हवास में अभिमन्यु के इतने करीब आने पर इशिका के दिल की धड़कनें शोर मचा रही थी। वहीं उससे अलग अभिमन्यु बिल्कुल काम होकर बैठा था। अभिमन्यु ने इशिका की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, तुम लोगों की आंखों में देखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करती हुई अच्छी लगती हो, ना कि इस तरह टिपिकल लड़कियों की तरह शर्माकर नजरें झुकाकर बैठे हुए। इशिका ने अभिमन्यु की बात पर हां में सिर हिलाया और फिर कुछ पल रुककर सीधा मुद्दे पर आते हुए पूछा, अच्छा बताओ क्या जरूरी बात करनी थी, मुझे किसी और से भी मिलने जाना है। इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर ठीक से बात तो कर लो, तुमसे मिलने के लिए आखिर मैंने इतनी मेहनत की है, अभिमन्यु बोला। हाँ, कुछ ज्यादा ही मेहनत की है, एक फेक आईडी क्रिएट की और फिर अजीब से ब्लैकमेल करने वाले मैसेज भेजे। वैसे तुम ये काम कब से करने लगे? इशिका ने हल्का मुस्कुराकर पूछा। अभिमन्यु की पर्सनालिटी काफी सख्त टाइप की थी, वो बात सीधे कहने में यकीन करता था, इस तरह घुमा फिराकर किसी से कोई बात कहना उसका अंदाज नहीं था। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कहो तो तुम्हारे सो कॉल्ड हस्बैंड को कॉल करके बोलूं कि मैंने उसकी वाइफ को किडनैप कर लिया है और अब वो उसे कभी नहीं मिलने वाली। देखा जाए तो उस कॉल के बाद वो काफी खुश होने वाला है, अभिमन्यु ने सार्केस्टिकली कहा। अभिमन्यु की बात सुनकर ऋषिका थोड़ा चौंक गई थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर अभिमन्यु ने कहा, इस तरह हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैंने उस आदमी के बारे में सब पता लगा लिया है। उसने तुम्हारी बहन से पैसों के लिए शादी की थी, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारता हुआ फिरता है। अभिमन्यु ने तरुण के बारे में बिल्कुल सही पता लगाया था। इशिका को उसकी बातें सुनकर ईशानी के लिए काफी बुरा महसूस हो रहा था। उसने मायूसी से कहा, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है, हर उस इंसान के लिए बुरा लगता है जो किसी से सच्चा प्यार करता है और उसे इस तरह प्यार में धोखा मिलता है। हाँ, बुरा तो लगता है, पर अफसोस कि हम उससे बहुत देर से मिले और उसके लिए कुछ नहीं कर पाए, अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर कहा। इशिका के पास टाइम नहीं था, अभिमन्यु उस बात को अच्छे से जानता था। कुछ पल रुककर उसने इशिका के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, अच्छा सुनो, मिस्टर केशव सिंघानिया को तुम पर शक हो गया है कि तुम जिंदा हो। मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारे बारे में पता क्यों लगाना चाहते हैं, पर अगर उन्हें डाउट हो गया है तो वो इस मामले में अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे, संभल कर रहना, वैसे भी वो तरुण दीवान से मिल चुके हैं। चिंता मत करो, ये ईशानी का मास्क मुझे सबसे प्रोटेक्ट करके रखेगा, इशिका ने जवाब दिया। अचानक उसकी आंखें नम होने लगी, उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर धीरे से पूछा, माँ के बारे में कुछ पता चला? इशिका ने जिस दिन अभिमन्यु को राधिका के बारे में बताया था उसी दिन उसे राधिका को ढूंढने का काम भी दिया था। मैंने अपने आदमियों को लगा दिया है, लेकिन तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सब किसी ऐसे शख्स ने किया है जिसका उनके साथ कोई गहरा ताल्लुक रहा है, अभिमन्यु ने जवाब दिया।
हाँ, वो जो भी है उसका माँ और आदर्श सिंघानिया के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहा होगा। ईशानी भी उस शख्स के बारे में जानती है और उससे डर रही थी, बस यही वजह है कि मैंने ईशानी की जगह ली है। अगर उन लोगों ने मेरी माँ को किडनैप किया है तो वो जरूर ईशानी से कॉन्टैक्ट करेंगे और मैं उन तक पहुँच जाऊँगी, इशिका ने सख्ती से जवाब दिया। जो भी हो, लेकिन इन सब में तुम खुद को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाली हो, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर रिस्क नहीं लूँगा। जब तक सब कुछ आराम से हो रहा है ठीक है, लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि इन सबसे तुम्हें कोई खतरा हो रहा है तो मैं एक मिनट भी नहीं रुकूंगा तुम्हें वहाँ से निकालने में, अभिमन्यु ने सीधे सीधे अपनी बात रख दी थी। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। इशिका को अभिमन्यु के पास आए हुए लगभग 40 मिनट का टाइम हो चुका था। टाइम का ख्याल रखने के लिए इशिका ने अपने मोबाइल में अलार्म लगा दिया था ताकि वो युविका से मिले तब भी वो सही टाइम पर घर पहुंच जाए। वो माया और तरुण को शक करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी। अलार्म बजने के साथ ही इशिका ने मायूसी से अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, मुझे जाना होगा, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं रोक सकता, अभिमन्यु ने जवाब दिया। इशिका उसकी गोद से उठने को हुई तभी अभिमन्यु ने अपनी उंगलियां उसके कमर पर और भी टाइट कर दी थीं। उसने इशिका के माथे पर अपना माथा लगाते हुए धीरे से कहा, क्या थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? मैं रुकना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे बहुत दूर बुलाया है अभिमन्यु, यहाँ से जाने में टाइम लगेगा, ऑलरेडी मैं लेट हूँ, इन सबको सेट करने में भी। इशिका भारी मन से सब कुछ बोल रही थी, उसे अभिमन्यु को मना करते हुए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन इशिका की बात पूरी होने से पहले ही अभिमन्यु ने अपने होंठ उसके होंठों पर टिका दिए, हालांकि वो उसे किस नहीं कर रहा था। उसके ऐसा करते ही इशिका शांत हो गई, सिर्फ दूर बुलाया ही है, मेरा बस चलता तो तुम्हें इन सबसे दूर लेकर चला जाता और यूं ही हमेशा अपने आगोश में लेकर रखता, अभिमन्यु ने हस्की वॉइस में कहा। बोलते हुए उसके होंठ इशिका के होंठों को छू रहे थे। बस थोड़ा टाइम दो, इशिका ने जवाब दिया। फिर कुछ पल रुककर वो अभिमन्यु के चेहरे पर हाथ रखकर बोली, अगर माँ की बात नहीं होती तो मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अपने ऊपर आने वाले किसी खतरे से और ना ही किसी की बातों से। तुम भी जानते हो कि मैं उन्हें इस तरह छोड़ नहीं सकती हूँ, जानता हूँ, तभी कुछ कह नहीं सकता। चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे और वो सही सलामत होगी, अभिमन्यु ने इशिका को आश्वासन दिया। इशिका को लेट हो रही थी इसीलिए अभिमन्यु ने उसके ऊपर अपनी पकड़ को ढीला छोड़ दिया था। इशिका उसके पास में आकर बैठी और फिर वापस उसे मास्क और लेंस को सेट करके ईशानी बनने की तैयारी करने लगी। पृथ्वी चुपचाप उन्हें देख रहा था। इशिका के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद अभिमन्यु ने कहा, वापस कब मिलने आओगी? इशिका ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, इस बार कोई नया तरीका अपनाना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे फेक आईडी के जाल में इस बार नहीं आने वाली हूँ मैं। फिर वो कुछ सोचकर बोली, वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हारा नंबर क्यूट दादी का इर्रिस्पॉन्सिबल पोता के नाम से सेव कर रखा था? जब हमारी शादी का सच सामने आया था तभी मैंने देख लिया था, मुझे लगा एक इर्रिस्पॉन्सिबल ग्रैंडसन नाम से आईडी बनाऊंगा तो तुम पहचान जाओगी, अभिमन्यु ने जवाब दिया। हाँ, इसी अजीब नाम से अभिमन्यु ने आईडी बनाकर इशिका को मैसेज भेजा था। इतनी परेशानी के बीच इशिका इस बात को भूल गई थी या इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया था। मुझे जाना होगा, इशिका ने जवाब दिया। उसने अपना बैग उठाया और जाने को हुई। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा, इशिका को छोड़ने का उसका मन नहीं कर रहा था। इशिका गाड़ी के दरवाजे की तरफ पलटने के बाद वापस अभिमन्यु की तरफ देखने लगी और फिर उसने अभिमन्यु को अपने सीने से लगा लिया। तुम बहुत स्ट्रांग हो, लोगों को दिखा दो कि अभिमन्यु राजवंश कौन है। अब अगर दिल्ली में कदम रखा ही है तो कामयाब होकर ही निकलना, इशिका ने कहा। वो अभिमन्यु से अलग हुई और जाने लगी। तभी अभिमन्यु के मोबाइल पर एक कॉल आया। उसे कॉल देखकर इशिका के चेहरे पर अचानक ही गहरी मायूसी के भाव छा गए थे। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। अभिमन्यु उसकी इस तकलीफ को समझ सकता था। अचानक ही इशिका ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसी और वहां से जाने को हुई। तभी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा। नहीं अभिमन्यु, मुझे देर हो रही है, इशिका ने सख्त शब्दों में नाराजगी जताते हुए कहा और फिर उसे वहीं पर छोड़कर बिना कुछ सुने वहां से चली गई। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि इशिका का दिल दुखा है, तो वहीं अभिमन्यु सर्द निगाहों से अपने मोबाइल स्क्रीन को घूर रहा था। क्या लगता है किसका कॉल आया होगा जिसे देखकर इशिका इतना गुस्सा हो गई? चलिए पढ़कर रेटिंग दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं। आप सबके पेशेंस के लिए थैंक्स। कई बार ऐप काम होने की वजह से मैं चैप्टर पब्लिश नहीं कर पाई, फिर भी आप काफी धैर्य से कहानी के साथ बने हुए हैं, उसके लिए फिर से थैंक्स।